एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी रचना के संसार में उतर रहे हैं जिसने न सिर्फ स्पैनिश साहित्य बल्कि कह सकते हैं कि विश्व साहित्य को ही हमेशा के लिए बदल दिया।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं मिगुएल दे सर्वांटेस सावेद्रा के कालजेई उपन्यास द इंजीनियस जेंटलमैन डॉन क्योटे दे ला मांचा की।
एक ऐसा नाम जो कल्पना, भ्रम और आदर्शवाद का जैसे पर्याय बन गया है।
सही कहा। और इस अद्भुत कृति के पीछे जो लेखक है मिगुएल दे सर्वांटेस,
जी
उनका अपना जीवन भी किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं था, है ना?
अरे बिल्कुल, 1547 में जन्म हुआ, फिर वो सैनिक बने, लेपांटो की लड़ाई लड़ी जहां उन्होंने अपना बायां हाथ खो दिया, इसीलिए उन्हें एल मैंको डे लेपांटो यानी लेपांटो का काना भी कहा जाता था।
अच्छा।
और फिर समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया, 5 साल अल्जीयर्स में गुलामी में बिताए। तो ये सारे अनुभव, मतलब जाहिर है उनके लेखन में बहुत गहराई से उतर आए।
हाँ, ये तो दिखता है उनकी कलम में, वो जीवन की कठोर सच्चाई, इंसान की हिम्मत और साथ ही वो हंसी और आंसू का एक अजीब सा संगम मिलता है।
बिल्कुल, और उनकी लिखने की शैली भी बिल्कुल आम लोगों की भाषा थी, लेकिन उसमें गहरी इंसानियत झलकती थी। और विडंबना, यथार्थ और कल्पना के बीच की वो महीन रेखा,
हाँ, उसी पर वो हमें सोचने को मजबूर करते हैं। डॉन क्योटे जो दो भागों में आया 1605 और 1615 में, वो तो मतलब रातों रात यूरोप में छा गया था।
जी हालांकि शुरू में लोगों ने इसे ज्यादातर शिष्टतापूर्ण रोमांस यानी वो जो शूरवीरों वाली कहानियां होती थीं।
हाँ हाँ, जिनमें दैत्यों से लड़ाई, राजकुमारियों को बचाना,
बिल्कुल उन्हीं की पैरोडी या मजाक समझा, वो उस जमाने में बहुत लोकप्रिय थीं।
लेकिन ये उपन्यास सिर्फ एक पैरोडी नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था।
कहीं ज्यादा, इसे दुनिया का पहला आधुनिक उपन्यास कहा जाता है।
क्यों, ऐसा क्या खास था?
क्योंकि इसमें एक ऐसा नायक है जिसके मन की उथल पुथल, उसके अंदर के विरोधाभास, वो हमें आज भी बहुत अपने से लगते हैं। मतलब एक जटिल मनोवैज्ञानिक किरदार।
और दूसरा भाग, उसमें तो उन्होंने कमाल ही कर दिया।
हाँ, वो मेटाफिक्शन वाला तत्व, मतलब कहानी के किरदारों को ये पता है कि उनके बारे में एक किताब छप चुकी है और वो मशहूर हो गए।
आज से 400 साल पहले, ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है।
बिल्कुल, दरअसल ये उन्होंने एक अनधिकृत सीक्वल के जवाब में भी लिखा था जो किसी और ने छाप दिया था।
अच्छा, तो आज की हमारी बातचीत का मकसद यही है कि इस विशाल उपन्यास के दिल में उतरे।
हाँ, इसकी कहानी के पर्ते खोलें, किरदारों को समझें।
बिल्कुल, डॉन क्योटे और सांचो पांजा, उनकी यात्रा, उनके भावनात्मक उतार चढ़ाव और वो गहरे सवाल जो सर्वांटेस उठाते हैं, भ्रम क्या है, यथार्थ क्या है,
और एक बेरहम सी दुनिया में आदर्शों की क्या जगह है।
हाँ, तो चलिए लमांचा के इस दिलचस्प सज्जन की दुनिया में कदम रखते हैं।
तो कहानी शुरू होती है लमांचा के एक गांव से। यहाँ एक सज्जन रहते हैं, कोई 50 साल के, नाम है अलोंसो खेहानो।
सीधे साधे से?
हाँ बिल्कुल सीधे साधे, लेकिन किताबों के बेहद शौकीन। और किताबें भी कौन सी, वही शूरवीरों के कारनामों वाली, शिष्टतापूर्ण रोमांस जिन्हें कहते हैं।
अच्छा।
और वो इन कहानियों में इतने ज्यादा डूब जाते हैं, मतलब इतने ज्यादा कि असल दुनिया और कल्पना के बीच का फर्क ही उनके लिए मिट जाता है। सर्वांटेस लिखते हैं कि उनका दिमाग सूख गया था।
वाह, सूख गया था। और इसी सूखी दिमाग से फिर एक नया विचार निकलता है।
हाँ, एक महान विचार कि शूरवीरता के उस पुराने महान युग को फिर से जिंदा किया जाए जिसे दुनिया भूल चुकी है।
और यही जन्म होता है डॉन क्योटे दे ला मांचा का।
बिल्कुल, अलोंसो केहानो अब डॉन क्योटे बन जाते हैं, अपने परदादा का वो पुराना जंग खाया कवच निकालते हैं, पहनते हैं,
अपने मरियल से घोड़े को एक शानदार नाम देते हैं, रोसिनांटे, है ना?
हाँ, रोसिनांटे, जो उनकी नजर में दुनिया का सबसे बेहतरीन घोड़ा है। और सबसे जरूरी चीज, अपनी प्रेरणा के लिए एक प्रेमिका चुनते हैं,
एक काल्पनिक प्रेमिका।
हाँ काल्पनिक, डल्सिनिया डेल टुबोसो।
और कमाल की बात तो ये है कि ये डल्सिनिया असल में कौन है?
असल में वो पास के ही गांव की एक किसान लड़की है, अल्डोंजा लोरेंजो, हट्टी कट्टी सी, थोड़ी लहसुन की गंध वाली, और उसे तो पता भी नहीं कि कोई शूरवीर उसके नाम पर दुनिया जीतने निकल पड़ा है।
यहीं से मतलब उपन्यास का वो केंद्रीय संघर्ष शुरू होता है, डॉन क्योटे की अपनी बनाई हुई भव्य दुनिया और आसपास की जो रूखी असल हकीकत है।
बिल्कुल, उन दोनों के बीच का टकराव।
वो पवन चक्कियों को देखता है और उन्हें दैत्य समझ बैठता है।
हाँ, और उन पर हमला कर देता है। भेड़ बकरियों के झुंड उसे दुश्मन सेनाएं दिखाई देते हैं। साधारण सी सराय उसे कोई जादुई महल लगती है।
तो यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि डॉन क्विक्सोटे पागल है या नहीं।
नहीं, सवाल उससे कहीं गहरा है।
है? उसमें आदर्शों का, कल्पना का, नेक इरादों का कोई मोल बचा है?
हाँ, मतलब क्या है बेहतर, समझदारी भरा मोहभंग या फिर एक उद्देश्य के लिए जिया गया पागलपन? ये दुविधा जैसे उपन्यास के केंद्र में है।
और अपनी इस अनोखी यात्रा पर वो अकेले नहीं जाते, उन्हें एक साथी चाहिए।
जी हाँ, एक अनुयायी, एक स्क्वायर, और इसके लिए वो गांव के ही एक सीधे साधे किसान सांचो पांजा को मना लेते हैं। थोड़ा पेटू है, दुनियादार है।
और उसे लालच क्या देते हैं?
लालच देते हैं कि जब वो अपनी शूरवीरता से कोई राज्य जीतेंगे तो सांचो को एक द्वीप का गवर्नर बना देंगे।
वाह, द्वीप का गवर्नर।
हाँ, और इसी वादे पर सांचो उनके साथ चल पड़ता है, और यहीं से साहित्य की शायद सबसे यादगार और मशहूर जोड़ियों में से एक का सफर शुरू होता है।
हाँ, वो लंबा दुबला पतला, सपनों में खोया आदर्शवादी शूरवीर,
और वो नाटा मोटा, पूरी तरह से जमीन से जुड़ा यथार्थवादी किसान।
डॉन क्विक्सोटे का किरदार बड़ा पेचीदा है, मतलब वो हंसाता भी है और रुलाता भी है।
बिल्कुल, शुरू में उसकी हरकतें मूर्खतापूर्ण लगती हैं। वो खुद को भी मुसीबत में डालता है, दूसरों को भी।
लेकिन उसके इरादे, वो नेक है।
हाँ, इरादे बिल्कुल नेक हैं। वो सच में अन्याय से लड़ना चाहता है, कमजोरों की मदद करना चाहता है, दुनिया में सुंदरता सम्मान वापस लाना चाहता है।
और अगर शिष्टता वाली बातों को छोड़ दें तो वो काफी विनम्र भी है और बातें भी अच्छी करता है।
जीवाकपटु भी है, और अपने मिशन पर उसका विश्वास वो अटूट है।
उसकी यात्रा सिर्फ बाहर नहीं है, उसके अंदर भी एक यात्रा चल रही है।
हाँ बिल्कुल, भाग एक में तो वो पूरी तरह अपने भ्रमों में जी रहा है, लेकिन भाग दो तक आते आते, खासकर जब दुनिया उसके साथ क्रूर मजाक करने लगती है, तो उसके किरदार में एक उदासी सी आ जाती है, दुनिया की जटिलताओं की एक समझ झलकने लगती है।
और अंत, अंत तो बहुत मार्मिक है।
बहुत ज्यादा, मृत्यु शैया पर उसे होश आता है, वो डॉन क्विक्सोटे की पहचान को नकार देता है, कहता है वो सब मूर्खता थी, और अलोंसो के जानों के रूप में मरता है।
और ये पाठक को एक अजीब सी उलझन में डाल देता है कि क्या कठोर यथार्थ में लौटना उसके उन खूबसूरत भ्रमों की मौत से बेहतर था, पता नहीं।
सही बात है। वहीं दूसरी तरफ सांचो पांजा की यात्रा है, वो डॉन क्विक्सोटे के बिल्कुल विपरीत है।
हाँ, जिसे साहित्य में कॉमिक फॉइल कहते हैं, वो कहानी को जमीन पर रखता है।
शुरू में तो वो सिर्फ पेट भरने और वो गवर्नर बनने के लालच में ही साथ है। वो अपने मालिक के पागलपन पर हंसता भी है, शक भी करता है,
लेकिन वो द्वीप वाला सपना उसे जाने नहीं देता।
हाँ, मगर धीरे धीरे डॉन क्विक्सोटे के साथ रहते रहते अनजाने में ही वो उसके आदर्शों को, उसकी वफादारी को, यहाँ तक कि उसकी बातों की अजीब सी बुद्धिमानी को भी अपनाने लगता है।
इसी को आलोचक क्विक्सोटिफिकेशन, क्विक्सोफिकेशन कहते हैं शायद।
हाँ बिल्कुल, और विडंबना देखिए, जब ड्यूक और डचेस मजाक मजाक में उसे सचमुच एक नकली द्वीप बारातारिया शहर का गवर्नर बना देते हैं,
तो वो क्या करता है?
तो वो अपनी देहाती समझदारी और न्यायप्रियता से सबको हैरान कर देता है। मतलब वो काफी अच्छा गवर्नर साबित होता है।
कमाल है।
हाँ, लेकिन वो ये भी सीखता है कि सत्ता और पैसा कितना बड़ा बोझ है, और धीरे धीरे उसका अपने मालिक के प्रति जो रिश्ता है वो स्वार्थ से ऊपर उठकर गहरे स्नेह और वफादारी में बदल जाता है।
ये दिखाता है कि कैसे आदर्शवाद और यथार्थवाद, मतलब वो क्विक्सोटे और सांचो, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बदलते हैं।
बिल्कुल। और डल्सिनिया?
हाँ, डल्सिनिया वो तो जैसे कोई किरदार है ही नहीं, एक विचार ज्यादा है।
सही कहा, वो डॉन क्विक्सोटे के आदर्श का प्रतीक है। उसकी कल्पना में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे गुणी राजकुमारी है,
जबकि हकीकत में,
हकीकत में वो एक साधारण सी मेहनती किसान लड़की है। और यही जो खाई है आदर्श और यथार्थ के बीच, वही उपन्यास के हास्य और करुणा का स्रोत है।
डल्सिनिया ये भी दिखाती है कि आदर्शों को मूर्त रूप लेने की जरूरत नहीं होती, हमारी कल्पना ही उन्हें ताकत देती है।
बिल्कुल। अच्छा, भाग दो में एक और किरदार बहुत अहम हो जाता है, सैमसन कारास्को।
हाँ, सैमसन कारास्को, वो डॉन क्विक्सोटे के ही गांव का पढ़ा लिखा युवक है
जी, और वो एक तरह से तर्क का, समाज की जो मान्यताएं हैं उनका प्रतीक है। उसका इरादा वैसे नेक है।
नेक इरादा, क्या करना चाहता है वो?
वो डॉन क्विक्सोटे को उसके पागलपन से ठीक करके वापस घर लाना चाहता है।
अच्छा,
लेकिन उसका तरीका,
उसका तरीका थोड़ा अजीब है। वो खुद शूरवीर का भेष धरता है और डॉन क्विक्सोटे से लड़ता है।
भेष धरकर?
हाँ, पहले दर्पणों के शूरवीर के रूप में, फिर श्वेत चंद्रमा के शूरवीर के रूप में, और दूसरी बार वो डॉन क्योटे को हरा देता है।
हरा देता है,
फिर
शर्त रखता है कि हारने वाले को यानी डॉन क्योटे को एक साल के लिए हथियार छोड़कर घर लौटना होगा।
तो कैरास्को अपने मकसद में कामयाब हो जाता है।
हाँ, कामयाब तो होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये जीत नैतिक थी? उसने डॉन क्योटे का भ्रम तो तोड़ दिया, पर शायद उसकी आत्मा भी तोड़ दी। हो सकता है यही उसकी मौत का कारण बना हो।
ये सोचने वाली बात है, मतलब तर्क की जीत हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं।
बिल्कुल। अच्छा, आप कहानी की बात करें तो वो डॉन क्योटे की तीन यात्राओं या धावों सैलीज में बटी हुई है।
पहली यात्रा,
इसमें वो अकेले निकलते हैं।
हाँ बिल्कुल अकेले, और पहुंचते हैं एक सराय में जिसे वो महल समझ लेते हैं,
और सराय के मालिक से खुद को नाइट बनवा लेते हैं।
जी हाँ, विधिवत नाइट।
फिर उनका पहला नेक काम होता है एंड्रेस नाम के एक लड़के को बचाना जिसे उसका मालिक पीट रहा होता है।
हाँ, वो मालिक को डांटते हैं, कसम खिलवाते हैं कि वो लड़के का बकाया वेतन देगा।
लेकिन जैसे ही क्योटे आगे बढ़ते हैं, मालिक उस लड़के को पहले से भी ज्यादा बुरी तरह पीटता है।
ओ, तो नेक इरादा उल्टा पड़ गया।
बिल्कुल, ये तुरंत दिखा देता है कि नेक इरादों और दुनिया की असलियत में कितना फासला हो सकता है। क्योटे का दखल चीजों को बेहतर करने के बजाय बदतर कर देता है।
और ये यात्रा खत्म कैसे होती है?
ये खत्म होती है जब कुछ व्यापारी डल्सिनिया की सुंदरता को मानने से इनकार कर देते हैं, तो क्योटे उनसे भिड़ जाते हैं और पिट जाते हैं। फिर एक पड़ोसी ने पहचान कर वापस घर ले आता है।
अच्छा, फिर दूसरी यात्रा, इसमें सांचो पांजा साथ है।
हाँ, अब सांचो साथ है, और इसी यात्रा में उपन्यास का वो सबसे ज्यादा मशहूर सीन आता है,
पवन चक्कियों वाला।
हाँ, पवन चक्कियों वाला। क्योटे लगभग 30 पवन चक्कियों को भीमकाय राक्षस समझ लेते हैं,
और रोसिनांठे को एड़ लगाकर भाले से हमला।
बिल्कुल, नतीजा भाला टूट जाता है, क्योटे और घड़ा दोनों जमीन पर। ये सीन, ये भ्रम बना मिथार्थ का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन गया है।
हाँ, ये सिर्फ हंसी की बात नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे उनका वो आदर्शवाद उनकी आंखों पर पट्टी बांध देता है।
लेकिन इसमें एक अजीब सी दुखद सुंदरता भी है। नहीं, वो दुनिया को वैसा देखना चाहते हैं जैसी उसे होना चाहिए, ना कि जैसी वो है।
सही कहा, इसी यात्रा में वो भिक्षुओं को जादूगर समझ लेते हैं, नाई के पीतल के बेसिन को मेम्ब्रिनो का जादुई हेलमेट मान लेते हैं।
हाँ, और यहाँ सर्वांटेस साहित्य की ताकत और उसके खतरे दोनों को दिखाते हैं, कैसे कहानियां हमें प्रेरणा भी दे सकती हैं और भटका भी सकती हैं।
इस यात्रा का अंत भी बड़ा नाटकीय होता है।
जी, क्योटे के दोस्त, गांव के पादरी और नाई उसे वापस लाने की तरकीब सोचते हैं।
क्या तरकीब?
वो उसे चालाकी से पकड़कर एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर देते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि उस पर किसी दुष्ट जादूगर ने जादू कर दिया है।
अच्छा,
और इसी तरह उसे वापस गांव ले आते हैं, मतलब भ्रम को भ्रम से ही काटने की कोशिश।
और फिर आती है तीसरी और आखिरी यात्रा, भाग दो में। यहाँ कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है।
हाँ, क्योंकि अब डॉन क्योटे और सांचो मशहूर हो चुके हैं।
मशहूर कैसे?
उनके कारनामों की किताब यानी सर्वांटेस का लिखा भाग एक अब छप चुका है और लोग उसे पढ़ चुके हैं।
अरे वाह, तो अब दुनिया उनके साथ अलग तरह से पेश आती होगी।
बिल्कुल, अब लोग उन्हें सिर्फ पागल समझकर नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उनकी शोहरत का फायदा उठाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, खासकर अमीर और थोड़े ऊबे हैं ड्यूक और डचेस।
वो क्या करते हैं?
वो डॉन क्योटे और सांचो के लिए बड़े बड़े झूठे रोमांच रचते हैं, क्योटे के भ्रमों को हवा देते हैं, लेकिन सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए।
ये तो क्रूरता है।
हाँ है, और यहीं सांचो को उसका इनाम भी मिलता है, वो बारातारिया का गवर्नर बनता है।
और जैसा हमने पहले कहा, वो सबको चौंका देता है।
हाँ, अपनी सहज बुद्धि से, पर जल्द ही वो उस पद की जिम्मेदारियों और धोखेबाजी से घबराकर इस्तीफा दे देता है। ये अनुभव उसे जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाता है।
लेकिन डॉन क्योटे के लिए ये यात्रा ज्यादा दुखद होती है।
हाँ, बहुत ज्यादा। ड्यूक और डचेस एक भक्ति सी किसान लड़की को जादू से प्रभावित डल्सिनिया बताकर उसके सामने पेश करते हैं।
और क्योटी?
क्योटी उसकी सुंदरता नहीं देख पाता, वो मानता है कि किसी दुष्ट जादूगर ने उसकी प्रेमिका का रूप बिगाड़ दिया है। ये विश्वास कि उसकी डल्सिनिया पर जादू कर दिया गया है उसे अंत तक सताता रहता है और उसके दुख को और गहरा कर देता है।
इसमें समाज की क्रूरता दिखती है, कैसे लोग दूसरों के सपनों का, उनकी कमजोरियों का मजाक उड़ाते हैं।
बिल्कुल, इस यात्रा का और कह सकते हैं डॉन क्योटे के शूरवीर जीवन का अंत बार्सिलोना के समुद्र तट पर होता है।
वहां क्या होता है?
उसका सामना होता है श्वेत चंद्रमा के शूरवीर से,
जो असल में सैमसन कैरास्को है।
हाँ, भेष बदल हुए। द्वंद्व युद्ध होता है और क्योटे हार जाते हैं।
और शर्त?
शर्त के मुताबिक उन्हें हथियार त्याग कर एक साल के लिए गांव लौटना पड़ता है।
ये हार सिर्फ शारीरिक नहीं होगी?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मानसिक और आत्मिक हार है। उनका दिल टूट जाता है। वापसी के रास्ते में वो चरवाहों की तरह शांति से जीने की कल्पना करते हैं, लेकिन वो आग, वो शूरवीर वाली आग जैसे बुझ चुकी है।
घर पहुंचकर उन्हें तेज बुखार आता है
जी, और अपनी मृत्युशैया पर जैसे कोई चमत्कार होता है, उनका दिमागी संतुलन लौट आता है।
वो डॉन क्योटे की पहचान को मूर्खता कहकर खारिज कर देते हैं।
हाँ, अपनी वसीयत अलोंसो की जानो द गुड, यानी नेक अलोंसो की जानो के नाम से लिखते हैं, सांचो से माफी मांगते हैं और शांति से दुनिया छोड़ देते हैं।
और उनके दोस्त, वो उस पागल शूरवीर के लिए आंसू नहीं बहाते?
नहीं, वो उस भले इंसान अलोंसो की जानो के लिए आंसू बहाते हैं जिसे वो हमेशा से जानते थे। कहानी का ये अंत ये दिल को छू लेता है।
इस पूरी महागाथा में कई गहरे विषय हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा तो वही है, भ्रम बनाम वास्तविकता।
हाँ, क्योटे अपनी कल्पना की दुनिया में जीता है, लेकिन क्या वो दुनिया पूरी तरह झूठी है? क्या उसमें कोई सच्चाई नहीं?
उपन्यास हमसे पूछता है कि कल्पना का, आदर्शों का जीवन में क्या महत्व है,
और फिर वो विवेक और पागलपन के बीच की धुंधली सी रेखा। क्योटे शूरवीरता की बातों में बहकावा लगता है, लेकिन बाकी मामलों में तो वो काफी समझदार बातें करता है।
हाँ, जबकि दूसरी तरफ वो ड्यूक और डचेस जैसे समझदार लोग कितने क्रूर और खोखले लगते हैं।
तो क्या पागलपन सिर्फ समाज के बनाए नियमों से अलग चलना है? ये सवाल भी उठता है।
बिल्कुल, और आदर्शवाद बनाम व्यावहारिकता का द्वंद वो क्योटे और सांचो के रिश्ते में साफ दिखता है।
हाँ, क्योटे हवा में महल बनाता है, सांचो जमीन पर पैर रखता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, बदलते हैं।
शायद सच्ची बुद्धिमानी इन दोनों के संतुलन में ही है, ऊंचे आदर्श भी हों और जमीनी हकीकत की समझ भी।
जी, अच्छा, सर्वांटेस की लिखने की शैली भी तो क्रांतिकारी थी।
हाँ, वो सिड हेमिट बेनिंजी वाला किस्सा।
हाँ, एक काल्पनिक अरबी इतिहासकार की पांडुलिपि का अनुवाद करने का दावा करना, इससे वो कहानी और हकीकत के बीच खेलते हैं। पाठक को लगातार याद दिलाते हैं कि भाई, तुम एक गढ़ी हुई कथा पढ़ रहे हो।
और विडंबना, पैरोडी, व्यंग्य, इनका इस्तेमाल करके वो सिर्फ हंसाते नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 17वीं सदी के स्पेनिश समाज की जो कमियां थीं, अमीरों का आलस्य, भ्रष्टाचार, धार्मिक पाखंड, उन पर भी तीखा कटाक्ष करते हैं।
और पाठक पर इसका भावनात्मक असर कैसा होता है? शुरुआत में तो हम क्योटी की हरकतों पर हंसते हैं।
हाँ, वो हमें एक भुलक्कड़, ख्याली पुलाव पकाने वाला बूढ़ा लगता है,
लेकिन धीरे धीरे वो हंसी सहानुभूति में बदल जाती है।
जी, हम उसकी निष्ठा, उसके नेक इरादों, उसके अटूट विश्वास का सम्मान करने लगते हैं।
और भाग दो में ये सहानुभूति करुणा बन जाती है, खासकर जब ग्यूक और डचेस जैसे लोग उसके सपनों का मजाक उड़ाते हैं।
हाँ, हमें उस बूढ़े आदमी के लिए दर्द महसूस होता है जिसका दिल दुनिया की कठोरता ने तोड़ दिया। और अंत में जब अलोंसो के खानों मरता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने डॉन क्योटे को खो दिया।
हाँ, उस आदर्शवादी सपने देखने वाले को।
बिल्कुल,
ये उपन्यास हमें अपने अंदर भी झांकने पर मजबूर करता है। हमारी अपनी पवन चकिया क्या है?
सही सवाल है। वो कौन से आदर्श हैं, कौन से भ्रम हैं जिनके सहारे हम जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करते हैं?
क्या कल्पना के बिना जीवन जीने लायक भी है?
सर्वांतेस शायद यही कहते हैं कि हाँ, दुनिया कठोर है, मुश्किल है, लेकिन उसमें सुंदरता का, न्याय का, एक बेहतर भविष्य का सपना देखना भी इंसान होने का हिस्सा है।
डॉन क्योटे भले ही हास्यास्पद लगे, पर उसका साहस दुनिया को बदलने का, या कम से कम उसे अलग नजरिए से देखने का, वो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करता है।
बिल्कुल,
सचमुच ये कहानी हमें सिखाती है कि सपनों और यथार्थ के बीच का संतुलन साधना कितना जरूरी और कितना मुश्किल है। और आदर्शवाद में शायद दुनिया को बदलने की ताकत न हो, पर उसे देखने का नजरिया बदलने की ताकत तो जरूर है।
और डॉन क्योटे की वो कभी हार ना मानने वाली भावना, वो हमें याद दिलाती है कि दुनिया जैसी है उसे बस स्वीकार कर लेने के बजाय, दुनिया जैसी होनी चाहिए उसके लिए कोशिश करने में भी एक अनोखी गरिमा है, एक शान है, चाहे नतीजा कुछ भी क्यों ना हो।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।